ओम शांति। आदरणीय रमेश भाई जी का हम सभी करतल ध्वनि के साथ स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आप सभी ने कल बाबा की मुरली सुनी, बहुत प्यार भरी थी। उस मुरली को सुनते सुनते आदरणीय रमेश भाई जी कितनी गहराई में जाकर उसका हम सबको बहुत सरल सहज तरीके से मुरली का पूरा ही रहस्य समझाते कि बाबा ने हम सबको क्या इशारा दिया, क्या कहा। आदरणीय रमेश भाई जी, आपने कॉमर्स का परिचय ही है कि कॉमर्स डिग्री लॉ डिग्री के साथ आपने 1956 में चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा फर्स्ट क्लास फर्स्ट में पास की। 1957 में चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में प्रैक्टिस के साथ आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में पूर्ण रूप से समर्पित हुए। आप इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियां 50 वर्षों से भी अधिक समय से जिम्मेवारी से कर रहे हैं। आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। साथ ही साथ आप इस विद्यालय की फाइनेंस प्रॉपर्टीज लीगल प्रशासनिक कार्य भी देखते हैं। आप वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। ब्रह्मा कुमारी एजुकेशन सोसाइटी के फाउंडर सेक्रेटरी, आप राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और गवर्निंग बोर्ड के मेंबर हैं। आप आरईआरएफ के जुरिस्ट विंग के चेयरपर्सन हैं। आप स्पार्क विंग के चेयरपर्सन। आदरणीय रमेश भाई जी ने बहुत सारी अच्छी अच्छी बहुत किताबें लिखी और आप एक अच्छे कवि भी हैं। आप द्वारा लिखी किताब पवित्र धन आपके अर्थव्यवस्था के गहरे समझ और जीवन के दर्शन शास्त्र को बताता है। इसके साथ ही आपने आर्टिकल ड्रामा भी लिखा। आप विशेष रूप से यूनाइटेड नेशन द्वारा सम्मानित हैं और इससे संबंधित एनजीओ इंस्टीट्यूशन यूएसए यूके इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेलेंस इन फाइनेंशियली मैनेजमेंट द्वारा भी सम्मानित है। आपने विश्व के अनेक देशों में बाबा का परिचय देकर ईश्वरीय सेवा का परचम लहराया है। आप डायरेक्टर आर्ट ऑफ कल्चर विंग, चेयरपर्सन गॉडलीवुड स्टूडियो। आज यह गॉडलीवुड स्टूडियो पूरे विश्व के अंदर पीस ऑफ माइंड चैनल के रूप में प्रसिद्ध हुआ है, जिसमें आपका बहुत योगदान है। लेटेस्ट किताब पुरुषोत्तम संगम युग आदरणीय भाई साहब ने लिखी और हम सब आज सुनेंगे मुरली का मनन चिंतन।
ओम शांति। मैं हमेशा ही बहन को कहता हूं कि मेरा परिचय जो सच्चा परिचय वो तो आप देते नहीं हो। मैं एक आत्मा हूं और परमात्मा के संतान हूं, ये मेरा सच्चा परिचय है। बाकी तो ये सारे जो भी है ईश्वरीय सेवा की जिम्मेदारियां मिली हुई है वो तो समय समय के साथ साथ बदलती रहती है, ऊपर नीचे भी होती रहती है। आप सबके साथ कल की अव्यक्त मुरली जो बाबा ने सुनाई उसके बारे में थोड़ा विचार सागर मंथन करने का मुझे मौका मिला है। गुलजार दादी स्टेज पर आए 7:35 को आए और 7:47 को ही ध्यान में गए और ध्यान में ही उसी सेकंड में बाबा की प्रवेशता उनके अंदर हो गई। 7:47 से 7:56 तक बाबा ने दृष्टि दी और उसके बाद मुरली चलाई। मुरली जो है करीब 49 मुरली चली। उसके बाद स्टेज के ऊपर बाबा का कारोबार हुआ और बाबा हम बच्चों से विदाई लेकर के 9:35 पर गए। इस प्रकार से कारोबार है। दो बातें मुझे पहले कहनी थी। कई बार हम समझते हैं कि हमने परमात्मा को पहचाना है, तो मुझे कभी कभी लगता है कि हमने बाबा जो मुरली में कहता है मैं जो हूँ जैसा हूँ, इस प्रकार का मुझे बहुत कम बहनों या भाइयों ने पहचाना हुआ, ये हकीकत है। पिछले टाइम बाबा ने जो मुरली चलाई उसके अंदर आपने देखा होगा कि बाबा गुरु दादा जी ध्यान में कब गए, बाबा के प्रवेश कब हुई वो मालूम नहीं पड़ा। तो कहीं कहते थे अरे ये तो गुलजार दादी ही थे, बाबा आया ही नहीं है। और कहीं कहते थे कि और इनफैक्ट हमारी रोजरी पर एक बड़ी अपनी सीनियर बहन ने भी लिखा हुआ है कि बाबा का आवाज बदली हुआ था, जैसे कि हम बाबा को उसकी आवाज से पहचानने की कोशिश करते हैं। आवाज से पहचानना और वास्तविकता का क्या परिचय है उसके बीच का फर्क समझना पड़ेगा। और आप में से उस टाइम तो थे नहीं, ब्रह्मा बाबा के तन में जब श्री बाबा आते थे, कभी तो गुलजार दादी के तन में आते हैं जाते हैं तो मालूम पड़ता भी है, कल मालूम नहीं पड़ा गई गुलजार दादी और आ गए, ऐसा ही बाबा का साकार बाबा के तन में होता था, कभी कभी आया कभी गया, कभी आया कभी गया, मालूम ही नहीं पड़ता था। ब्रह्मा बाबा कहता था कि मुझे हमेशा ही तैयार रहना पड़ता है कि बाबा वो जो बाप जो है अव्यक्त बाप जो है वो कभी चला जाएगा, तो उसके बाद उसके साथ में उसकी जिस लिंक में बाबा मुरली चलाते हैं अव्यक्त बाबा, वही लिंक में वही स्पीड से वही रफ्तार से वही विचारधारा के आधार पर मुझे मुरली चलानी पड़ती है। फिर मुरली चलाते थे, कभी मुरली चलाते चलाते श्री बाबा आ जाते थे, कई बार ऐसा होता था। मुझे याद है एक बार एक सन्यासी जो है पांडव भवन में आया हुआ था, पांडव भवन में आया था, तीन चार दिन रहा और जैसे कि बहुत बाबा का बच्चा बन गया है इस प्रकार का रहा। और फिर उस जा रहा था, उसने बाबा को कहा, साकार बाबा को कहा कि बाबा मुझे बॉम्बे जाना है, मुझे बॉम्बे के सेंटर पर रहने के लिए चिट्ठी दे दो। साकार बाबा ने चिट्ठी लिखने के लिए यीशु दादी को कहा कि तुम चिट्ठी लिख दो कि ये बच्चा आ रहा है सन्यासी है और उसका ध्यान रखना, ऐसा सेंटर के ऊपर चिट्ठी लिखने के लिए बोला। इतना बोलते थे इतने में तो अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त बाबा की ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेशता हुई और बाबा अव्यक्त बाबा ने कह दिया कि नहीं इस बच्चे को सेंटर पर नहीं भेजना है, इस बच्चे को रमेश के घर पे भेजना है, रमेश के घर पे रहेगा और रमेश के घर से ही कारोबार करेगा। फिर वो चिट्ठी लेकर के बॉम्बे में आया, बाद में जब निकला उसके बाद बाबा अव्यक्त बाबा ने कहा कि देखो ये साकार बाबा जो है साकार बाप जो है वो त्रिकालदर्शी नहीं है, ये कौन है उसको पहचान नहीं सका और बाप भी पहचान सका कि ये सन्यासी नहीं है परंतु इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया हुआ था और इस प्रकार से बॉम्बे में आया, हमारे घर पे भी रहा, कारोबार देखा, सब कुछ किया और चला गया। कहने का तात्पर्य यही है कि अव्यक्त बाबा की पधरावनी कब होती है कब नहीं होती है, वो साकार बाबा के समय में आप अगर होते तो आप समझते ही नहीं कि परमात्मा बोलता है या ब्रह्मा बाबा बोलता है। इस प्रकार से कलकत्ता पिछले टाइम की भी मुरली के अंदर आवाज के आधार पर पहचानने का कोशिश करने के लिए हमारे पास भी कई भाई बहन आए कि बाबा का आज आवाज क्यों बदली हुआ था, हमने कहा आवाज बदली हुआ बाबा बदले तो नहीं हुआ था ना, बाबा का आवाज बदली हुआ था, बाबा का शरीर जो है रथ जो है जिस रथ के द्वारा उनको बोलना होता है, उस रथ की तबीयत है हेल्थ है उसके आधार पर होता है, उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो क्या करे हमारे बहन भाई जो है बाबा को जिस प्रकार से, इसलिए बाबा ने जो कहा है कि मैं जो हूँ जैसे हूँ जैसा हूँ कारोबार जो कर रहा हूँ बहुत कम बच्चे मुझे पहचानते हैं, और इसलिए हम लोग अभी ऐसे ही करते सोचते हैं कि बाबा की आवाज से पहचानते हैं बाबा का, इसके कर रहे कल भी बाबा कैसे आए पिछले टाइम पर कैसे गए आए, ये सारी बातों को नोट करते रहते हैं परंतु वास्तविकता कुछ अलग ही है। वो अलग वास्तविकता जो है उसको समझने की आप मेहनत करनी पड़ेगी, तब मानेंगे कि परमात्मा जो है जैसा है ऐसा हमने उनको पहचाना है। परंतु बाबा इसलिए बाबा ने कहा है कोटो में कहो और कहो में भी कहो मुझे पहचानते हैं, ये वास्तविकता है, ये हकीकत है। और यहाँ इतने हजारों के कल 25 हजार बैठे थे, उसमें कितने बाबा को पहचानते हो गए सही रूप में, वो तो ड्रामा ही जा रहे। कल की मुरली के बारे में मैं सोच रहा था कि मैं उसके बारे में एक्सप्लेनेशन कहाँ से शुरू करूँ, शुरू से शुरू करूँ या अंत से, आदि से अंत कर जाऊँ या अंत से आदि के ऊपर जाऊँ, सोच रहा था। तो पीछे मुझे ख्याल में आया कि कल आप जानते हैं इंदौर जोन के ओम प्रकाश भाई के कनेक्शन का ग्रुप था, और इसलिए ओम प्रकाश भाई के प्रति श्रद्धा अर्पित करने के लिए उनके उन्होंने जो बाबा से बात किया उससे मैं मुरली के कारोबार के बारे में शुरुआत करता हूँ। ओम प्रकाश भाई इंदौर ने बाबा को कहा कि तबीयत ठीक है, और ओम प्रकाश भाई ने बहुत एक नई बात अच्छी बात सुनाई। हम सब भी इसी इतनी उम्र तक बीमार नहीं पड़े हुए, उन्होंने कहा कि बाबा पहली बार बीमार हुआ हूँ। इस प्रकार से देखो ये कितनी सुंदर बात है कि इतनी बड़ी उम्र तक हम बीमार नहीं पड़े। हम लोग तो क्या होता है छोटी छोटी बातों में भी बीमार हो जाते हैं, पर भाई बाबा ने कहा तो सबकी मदद से बाप के साथ से आगे बढ़ते चलो, ठीक चल रहे हो आगे बढ़ते रहो। तबीयत ढीली है, थोड़ी है ढीली लेकिन ठीक हो जाएगी, अच्छा है, संभाल से चलते रहो। ये उनके साथ जो बात किया वो तो आप सब समझ गए होंगे कैसे बाबा ने उनसे बात किया। बाबा ने फिर उनको एप्पल दिया, वो सर बात आप लोगों ने नोट किया होगा। उसके बाद कमलेश बहन जो है कटक की, उन्होंने वो भी बाबा से मिले, बाबा ने उनको भी कहा ठीक है अच्छा है। तो कमलेश बहन ने कहा कि आपकी ब्लेसिंग से ठीक है, तो बाबा ने जवाब दिया कि ब्लेसिंग तो सदा है ही। इसके बाद जो बाबा ने महावाक्य उच्चार किए बहुत इम्पोर्टेंट बात है। बाबा ने कहा जो भी तबीयत में थोड़ा बहुत होता है तो समय कलयुग का है, कलयुग के अंदर आप जानते हैं सतयुग के अंदर तो बीमारी आदि की बात ही नहीं होती है। इसलिए बाबा ने जो कहा तबीयत में जो थोड़ा बहुत होता है उसका कारण क्या है, समय कलयुग का है, इसमें यह सब आता ही है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी बाप की याद में सूली से कांटा बनाना है। आवे कितना भी परंतु सूली के रूप में, लेकिन बाप की याद से सब कांटा बन जाएगा। ये शरीर के व्यवहार की बातें हैं, मेरा जीवन का भी अनुभव यही है। मैंने भी ब्रह्मा बाबा को पहली बार जब देखा बॉम्बे के अंदर, उनको किडनी का प्रॉब्लम था, किडनी का स्टोन का, इसके कारण आप उसे बॉम्बे लेके आए थे, हॉस्पिटल में थे, और मेरे लौकिक माता जी ने मुझे कहा कि ब्रह्मा बाबा को हॉस्पिटल में दाखिल किया है, आप आएंगा। मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। मैं गया हॉस्पिटल में, पहली बार बाबा को मैंने देखा, बाबा पर हॉस्पिटल के बिस्तर पर सोए हुए थे। बाबा को मैंने देखा तो मुझे बाबा की शरीर की जो भाषणा जो थी वो मुझे, मैंने अजंता एलोरा के बॉम्बे में, बॉम्बे से थोड़े दूर 200 किलोमीटर दूर गुफाएं हैं, उसमें एलोरा की गुफा के अंदर एक गौतम बुद्ध का स्टेच्यू है सोया हुआ, बुद्धा स्लीपिंग ऑन दी रॉक्स, अर्थात बुद्ध जो है वो पत्थर की शिला के ऊपर सोए हुए हैं, और वो उसकी इतनी सुंदर भव्य मुद्राएं उनके मुख के ऊपर थी। उस प्रकार से मैंने ब्रह्मा बाबा को भी देखा था, मुझे लगा कि एक धर्मस्थापक जो है, धर्मस्थापक के व्यवहार के चिन्ह सामुदायिक चिन्ह कैसे होते हैं, इस प्रकार का सामुदायिक चिन्ह मुझे को बाबा के मुख से दिखाई पड़ा। और मैंने बाबा को कहा कि बाबा आपका ऑपरेशन हुआ है, देखिए बाबा से कैसे ज्ञान शुरू हुआ मेरा, ज्ञान का पार्ट। तो बाबा ने कहा नहीं मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ है। मैंने कहा नहीं आपका ऑपरेशन हुआ है, तो कहा नहीं मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ है। तो मैंने मेरी लौकिक माताजी के सामने देख करके कहा, आपने तो कहा कि ब्रह्मा बाबा का ऑपरेशन हुआ है और इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ, और ब्रह्मा बाबा तो कहता है कि मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ है। मेरी माताजी भी मूंझ गई, इन्होंने भी ब्रह्मा बाबा को कहा कि बाबा आपका ऑपरेशन तो हुआ है। तब बाबा ने उस पहेली को उसका हल निकाला और कहा कि बच्चे मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ है, मेरे शरीर का ऑपरेशन हुआ है। मैं और मेरा शरीर अलग है, और इसलिए शरीर का ऑपरेशन हो सकता है, आत्मा का ऑपरेशन कैसे हो सकता है? आत्मा तो अजर अमर है, और इसलिए अजर अमर आत्मा का ऑपरेशन नहीं हो सकता है। और इस प्रकार से कह करके बाबा ने करीब 40-45 मिनट तक बाबा ने मुझे मैं आत्मा हूँ, कैसे आत्मा हूँ, क्या हो, इस प्रकार का ज्ञान दिया। इस प्रकार से ज्ञान का बीज मेरे अंदर जो है ब्रह्मा बाबा ने साकार बाबा के रूप में हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल के बिस्तर पर सोए हुए दिखाया से बताया। इस प्रकार से कई बार कईयों के साथ परिचय हुआ बीमारी का। बाबा का तो उस टाइम 52 की बात है, उसके बाद दूसरा एक अनुभव सुनाऊं। बाबा के लौकिक युगल जो है यशोदा माता भी बॉम्बे के हॉस्पिटल में थे, उनको भी कैंसर हुआ था। सर्जरी छूटा, उसके अगले दिन शाम को मैं उनको हॉस्पिटल में मिलने के लिए गया। हॉस्पिटल में गया तो मेरे को कहा, रमेश ये टोली खाओ। मैंने उनको कहा कि माता जी, मैं आपकी तबीयत की जांच करने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ टोली खाने के लिए नहीं आया हूँ। तो बाबा यशोदा माता ने कहा, रमेश अभी मिलना जो हुआ है वो ठीक है, दोबारा कभी मिलना होगा इसके लिए मैं आपकी पूरी खातरी करती हूँ और टोली खिलाती हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप खिलाते हो तो मैं खाता हूँ। और ये सचमुच लास्ट मुलाकात थी। दूसरे दिन दोपहर में ही 2:30 बजे यशोदा माता ने शरीर छोड़ दिया। इस प्रकार से शरीर छूटना आना जाना सबका काम होता ही रहता है। दादा विश्व किशोर का भी हमने देखा, कैसे हॉस्पिटल में ही ऑपरेशन के बाद 5वें दिन उनका शरीर छूट गया। इस प्रकार से कईयों का होता ही रहता है। तो ये जो बाबा ने जो कहा है कि सूली से कांटा बन जाता है, ये आप सबने तो कल पहली बार सुना होगा। मेरे पास अनुभव है, अहमदाबाद शहर के अंदर सेवा केंद्र की शुरुआत हुई, वहां पर उषा जी जो है हमारी लौकिक युगल जो थी वो वहां सेंटर इंचार्ज थी, और वहां पर क्लासेस कराती थी, रहती थी। क्लास के अंदर बहुत लोग आते थे, उसमें एक डॉक्टर KM चौकसी करके आते थे, वो दांत के डॉक्टर थे, परंतु अहमदाबाद के पहचान वाले थे, इसलिए बाबा ब्रह्मा बाबा कई बीमार बहनों को भेजते थे और उषा को कहते थे कि आप डॉक्टर चौकसी को कहो इन बीमारियों की तंदुरुस्ती, मतलब इन बीमार बहनों की तंदुरुस्ती दूर करने का प्रयत्न करें। तो एक दिन डॉक्टर चौकसी ने उषा को कहा कि आप ये सब बहनें तो राजयोगी बहनें हैं, पवित्र बहनें हैं, और ये पवित्र बहन होते हुए भी इस प्रकार से बीमार क्यों होती है? तो उषा ने कहा, वैसा मैं क्या जानू, आप बाबा को पत्र लिख करके दो कि बाबा ऐसी ऐसी बहनें यहाँ आती है, पवित्र रहती है, खान पान की शुद्धि है, सब कुछ होते हैं, उनको बीमारी क्यों होती है, क्यों होता है? उन्होंने पत्र लिखा बाबा को, और उषा ने बाबा के पास वो पत्र भेज दिया। बाबा ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि बच्चे आप सब मुरली बराबर सुनो, आप लोग मुरली बराबर सुनते नहीं हो, और इसके लिए ऐसा प्रश्न होता है। मैंने ये कहा हुआ है तो सूली से कांटा हो जाएगा, जो कल भी जो कहा ना वही बात बाबा ने उस पत्र में जवाब में लिखा, सूली से कांटा हो जाएगा। मैंने ये नहीं कहा कि सूली से जीरो हो जाएगा, कांटा के रूप में थोड़ा तो रहेगा, चुभता रहेगा। कारण क्या है? तब मालूम पड़ेगा कि बाप की मदद नहीं होती तो सूली जितना बीमारी का जो दर्द होता है, बीमारी की जो बातें होती उसको आपको अनुभव करना होता था, और उनको बाप की मदद से आपकी बीमारी जो है सूली से काटा जैसे होगी, काटे जैसे होने से आपको मालूम पड़े कि काटा जैसा हो बीमारी अभी जो है बाप की मदद से। अगर बाप की मदद नहीं होती तो बीमारी का सच्चा रूप कैसे होता, आप सब हम सब जानते हैं। द्वापर युग से हमारे शरीर की बीमारियां आदि आती रही, तो शरीर की बीमारियां का अनुभव हम सबको है। तो इस प्रकार से सूली से काटा हो जाता है, इसका अर्थ समझना पड़ेगा। बाबा ने कहा सूली से जीरो नहीं होता है, सूली से कांटा हो जाता है, मतलब कांटा के रूप में फिर भी थोड़ी बहुत बीमारी हमको चुभती रहेगी। तो इस प्रकार से ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि बाबा ने जो कल जो कहा कि आवे कितना भी सूली के रूप में, लेकिन बाप की याद से कांटा बन जाए, ये हमको प्रयत्न करना पड़ेगा, ये हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि बीमारी के टाइम पर बाप की याद कैसे रहे, और बाप की याद के कारण हमारा जो भी बीमारी का रूप जो है वो सूली के बदले में कांटा कैसे हो जाए। ये बहुत गूह्य बातें हैं, परीक्षा हमारे जीवन की परीक्षाओं की बातें हैं कि कैसे बीमारी आती है और बीमारी का रूप क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, और बीमारी के कारण शरीर के तकलीफ हो सकती है, तंदुरुस्ती ऊपर नीचे हो जाती है तो क्या हो सकता है, कारण क्या है, ये सारी बातों को समझना पड़ेगा। क्योंकि बाबा ने जो कल कहा कि ये समय कलयुग का है, कलयुग के अंदर इस प्रकार से बीमारियां आती ही रहेगी, और इसके कारण बाबा ने कल मुरली के अंदर भी कहा संगम युग है, परंतु अंत में यहाँ जब बीमारी की बात कही तो बाबा ने कहा ये समय कलयुग का है। कलयुग का समय और संगम युग का महान समय, उस दोनों का बीच का फर्क समझना पड़ेगा, और नहीं समझेंगे तो क्या हो जाएगा। और गुजराती में कविता है टके शेर खाजा टके शेर भाजी, इस प्रकार से सबको एक समान चलाने के लिए एक समान समझने का कोशिश करते हैं, इसके कारण ज्ञान की कई बातों को हम समझ नहीं सकते हैं, ये वास्तविकता है। कल बाबा ने अपनी शुरुआत की मुरली के 7:56 को, तो उसमें उसका मुरली का टाइटल जो है हमारे राजू भाई ने लिखा है प्रभु प्यारों का संगठन संगम के इस महान समय में ही होता है। हर बच्चे के दिल में बाबा और बाबा के दिल में शकीलदे बच्चे हैं। शकीलदे बच्चे का कहीं होगा अर्थ मालूम नहीं होगा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड अगेन, बहुत समय से अलग हो गए थे और अब बाप से फिर से मिल रहे हैं। तो इसको ये सिंधी शब्द है, सिंधी शब्दों का अर्थ इस प्रकार का रहता है। और बाबा ने नॉर्मल मुरली जैसे चलाते हैं उस प्रकार का कहा, कहा कि बाबा को पहचानने में बाबा की परीक्षा लेने में, हमारे भी कई बहन भाई ऐसे बाबा की परीक्षा लेते हैं, तो बाबा ने उस परीक्षा का उत्तर देने के लिए कल की मुरली में जो नॉर्मल पहले मुरली चलाने के टाइम पर शुरू करते थे उस प्रकार से ही कहा कि आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि हर एक बच्चा बाप को देख हर्षित हो मिलन मना रहा है। खाली बाबा को देख करके हर्षित नहीं हो रहा है, परंतु बाबा ने क्या कहा, हर एक बच्चा बाप से मिलन मना रहा है, बाबा का मिलन मनाना, और वो भी साकार रूप के अंदर, बाबा के साकार तन में आते हैं, साकार रस में आते हैं, और उसके अंदर मिलन प्राप्त मिलन करना, ये संगम युग की ही उपलब्धि है। बाकी तो सत्युग त्रेता बाप पर कलयुग में बाबा से इस प्रकार से साकार रूप में मिलना नहीं होता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ये मिलन मना रहे हैं, और ये मिलन क्या है, ये मिलन क्या है उसके भी बाबा ने परिभाषा बताई कि ये रूहानी मिलन कितना प्यारा है। रूहानी मिलन आत्मा का, आत्मा और परमात्मा का मिलन जो है वो कितना प्यारा है, और ये मिलन का क्या प्राप्ति क्या होगी, ये भी बाबा ने बता दिया। बाबा ने बहुत सरल शब्दों में ज्ञान की गहराई हम लोगों के सामने रखा, बाबा ने कहा यह मिलन अमर बनाने वाला मिलन है, हम बच्चों को अमर बनाने के लिए सत्युग कहता है हम अमर जैसे ही रहते हैं, कारण के लंबी आयु रहती है, आप जानते हैं 8 जन्म 12 जन्म इस प्रकार से हमारा जीवन व्यवहार होता है, और इस प्रकार से बाबा ने बताया कि अमर बनना जो है, और बाबा वरदान में देते हैं कि अमर भव, तो इस प्रकार से यह मिलन अमर बनाने वाला मिलन है। आपको ये सुनकर के खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमको अमर बना रहे हैं, और इसलिए बाबा ने कहा कि हरेक बच्चा अमर भव के वरदानी बच्चा है, हम सबको ये वरदान मिला हुआ है अमर भव का। बाबा वरदान तो देते हैं, और उस वरदान के आधार पर जीवन व्यवहार कैसे करने का ये हमारे हाथों में है, नहीं तो क्या होता है, बाबा तो बोलते रहते हैं। मैंने बाबा को कई बार कहा है बाबा आपने एक गलती किया है, साकार बाबा को भी मैंने कहा बाबा आपने एक गलती किया है, बाबा ने कहा मैंने क्या गलती की है बाबा, मैंने बाबा हंसते हंसते कहा बाबा आपने 2 कान दिए हैं ना ये आपकी गलती है। कहा बाबा क्या क्यों, मैंने कहा 2 कान दिया है इसलिए यहाँ से ज्ञान जाता है ना सीधा यहाँ से ही निकल जाता है, और यहाँ से कान ज्ञान जाता है यहाँ से ही निकल जाता है, 1 कान होता ना तो निकलता नहीं और अंदर जाता है, आप सोचना इसके ऊपर, 1 कान होता तो हम ज्ञान बराबर धारण कर सकते थे। बाबा कहते हैं मैं क्या करूं, बच्चों को तो 2 कान तो चाहिए ही ना। मैंने कहा हाँ बाबा 2 कान नहीं होते तो हम चश्मा कैसे पहनते हैं, हंसी की बातें हैं, बाबा के साथ हंसी की बातें बहुत करने की मजा आती थी, बहुत सी बातें हैं जीवन का अनुभव बहुत सी बातों का है। बाबा ने कहा आप कुछ भी हो लेकिन बच्चे बाप से मिलन बनाने में सदा बिजी है, सबसे मुख से क्या निकलता है, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, ये हमारी परिस्थिति हमारी स्थिति या इसका रिफ्लेक्शन है कि हमारा मन में क्या मुख से क्या निकलना चाहिए, वाह बाबा वाह, और मुख से बाबा के मुख से भी यही शब्द निकलते हैं कि वाह मेरे शकील बच्चे वाह, सबके मुख से वाह वाह का गीत सुनाई देता है, मुख से सुनाई देता है, साथ साथ बाबा ने कहा सबके चेहरे भी वाह वाह का गीत गा रहा है, चेहरा भी ऐसा नहीं है कि सब मुख से गाता रहे ऐसा नहीं, चेहरे से भी गा सकते हैं, इस प्रकार से चेहरा भी इस प्रकार का गीत को गीत गा रहा है, और बाप दादा भी रिस्पॉन्ड दे रहे हैं कि वाह बच्चे वाह। और बाबा ने बहुत अच्छी एक नई बात कही कि सबके दिल का आवाज, सबके दिल का आवाज, ये बाबा ही बोल सकता है क्योंकि हम लोग तो स्थूल रूप में रहने वाले हम त्रिकालदर्शी नहीं है। बाबा ने क्या क्या सुखदेव सबका दिल का आवाज चाहे दूर है, सारी दुनिया के अंदर कल मुरली सुनी जाती थी इसलिए चाहे दूर है चाहे नजदीक है लेकिन सबके दिल का आवाज रिस्पॉन्ड कर रहा है, बाप भी कहते हैं वाह बच्चे वाह और बच्चे भी कहते हैं वाह बाबा वाह, यह वाह वाह का गीत गूंज रहा है, और ये गीत कैसे निकलता रहता है, गाना पड़ता है गाना सिखाना, जैसे अभी मुरली के पहले मैं आज का क्लास से पहले गीत सुना है, इस प्रकार से हमारा गीत निकलना चाहिए मुख से क्या कैसे निकलना चाहिए वो भी बाबा ने बता दिया कि ये सबके फेस से ऑटोमेटिकली वाह वाह का गीत निकलता है ऑटोमेटिक, ये जैसे श्वास हम लेते हैं श्वास की क्रिया जो है ऑटोमेटिक होती है, हमें श्वास लेने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ऑटोमेटिक श्वास निकलता है आता है इस प्रकार से है। और आज की मुबारक सबके मुख से सुनाई दे रही है और सभी एक ही खुशी का गीत गा रहे हैं, वाह बाबा वाह खुशी का गीत, हाँ खुशी बाबा ने कई मुरलियों में कहा है कि खुशी आपका खुद का निजी खजाना है और इस खजाने को गवाना नहीं चाहिए, कुछ भी बात हो जाए जो भी बात आ जाए बात आएगी बात जाएगी परंतु हमारे दिल के अंदर की जो खुशी जो है वो खुशी शाश्वत रहनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं कि सबके दिल में एक ही खुशी का गीत गा रहे हैं। और बाबा ने कहा कि इस समय सारी सभा के दिल का आवाज क्या है, वाह बाबा वाह, और बाप का भी आवाज है वाह बच्चे वाह, सब वाह वाह है। भले पुरुषार्थी है, भले पुरुषार्थी है, परंतु नंबर वार भी है। कल की मुरली के अंदर 8 बार बाबा ने नंबर वार की बात कही है, 8 बार। साधारण रूप में बाबा कभी नंबर वार के शब्दों की इतनी बात नहीं करते हैं, कल 8 बार बाबा ने कहा सब, हाँ सभी भले पुरुषार्थी है, नंबर वार भी है। ये नंबर वार शब्द के ऊपर मेरी ब्रह्मा बाबा के साथ बहुत डिबेट होती थी। मैं बाबा को कहता बाबा मुरली में याद प्यार देते थे, उसमें कहते थे सभी बच्चों को नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार, तो मैं बाबा को कहता था बाबा ये नंबर वार शब्द क्यों आप बोलते हैं, सबको बोलो, सब सभी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। बाबा ने कहा नहीं, गुरु जाने गुरु की गोत्री जाने, बाप जानता है हाँ कि सबके पुरुषार्थ एक समान नहीं हो सकता है। मैं कहता था बाबा सबका पुरुषार्थ एक समान ही होता है, सबने अगर बाबा को पहचान लिया तो बच्चे पुरुषार्थ भी सबका एक समान होना चाहिए। बाबा ने कहा कि तुम बच्चा नया है इसलिए तुमको मालूम नहीं है, बाप जानता है हाँ कि बच्चे इतने होते हुए भी सब इतने बच्चे है पर उसमें भी नंबर वार ही है, और इसके कारण मुझे कहना पड़ता है सबको नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। और फिर एक आपको हंसी की बात सुनाऊं, एक बार एक अव्यक्त मुरली चलाई उसके अंदर बाबा ने बहानेबाजी की बात कही तो उसमें बाबा ने कहा कि बाबा सभी बच्चों को बहाने बनाने में पहला नंबर देते हैं, उसमें कोई नंबर वार नहीं है, सब पहला नंबर है, सबका पहला नंबर है बहाने बनाने में। तो फिर ये बाद में मुरली के बाद बाबा टोली देते थे तो मैं गया बाबा के पास, तो बाबा ने मुझे कहा बच्चे आज तो तुम खुश है ना, आज बाबा ने नंबर वार शब्द निकाल दिया और सबको पहला नंबर दिया कि सब बहाने बनाने में पहला नंबर है। आप समझे हम सबको बाबा ने क्या नंबर दिया, सब बहाने बनाने में पहला नंबर है। मैंने कहा बाबा इसके अंदर नंबर वार कही है, नंबर वार हम बहाने बनाते हैं परंतु बाकी सब पुरुषार्थ में सबको नंबर वन दीजिए। बाबा ने कहा नहीं, आज की मुरली का सार यही है कि सब बहाने बनाने में पहला नंबर है। तो इस प्रकार से देखो कई बातों में हम पहला नंबर है। आपको हंसी की बात सुनाऊं, दादा आनंद किशोर ने बॉम्बे के अंदर हमारे गोलावा सेंटर पर फ्रीज आया था और फ्रीज आया उसके बाद दादी निर्मल शांता ने आइसक्रीम बनाया तो आइसक्रीम सबको खिलाया, सबने आइसक्रीम प्यार से खाया क्योंकि यज्ञ के इतिहास में यज्ञ में पहली बार फ्रीज आया हुआ था और पहली बार घर का बना हुआ आइसक्रीम सबको खिलाया। तो आइसक्रीम खाने के बाद दादी निर्मल शांता ने सवाल पूछा सबको कि सबने आइसक्रीम खाने से पहले बाबा को याद किया, सबको बाबा सबको क्या प्रश्न पूछा कि सबने बाबा को आइसक्रीम खाने से पहले याद किया, तो किसी ने भी बाबा को याद नहीं किया। तो दादी निर्मल संता ने कहा यह ज्ञान की बात सही है, सुख में हम भगवान को कोई याद नहीं करता है, भगवान को कब याद करता है, दुख में याद करता है, सुख में सुमिरन कोई न करे, इस प्रकार का किसी ने भी नहीं किया। तो इसके कारण दादा आनंद किशोर ने पत्र लिखा ब्रह्मा बाबा को ब्रह्मा बाबा को पत्र लिखा कि बाबा हमारी भूल हो गई और हम इसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं, साथ में ये गारंटी देते हैं कि दादी निर्मल शांता अगर दोबारा आइसक्रीम खिलाएंगी तो हम आपको याद करके खाएंगे। तो बाबा ने उनको जवाब लिखा बच्चे कोई हर्जा नहीं, बच्चे तो भूलों के सागर है। सागर के अंदर एक बूंद पानी कम हो या एक बूंद ज्यादा हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप बच्चे तो भूलों के सागर ही है। मैंने बाबा को फिर पत्र लिखा, बाबा हम कई बच्चे कई बातों के हम सागर है, आप सर्वशक्तिवान है, परंतु कई बातें आप नहीं कर सकते जो हम कर सकते हैं। बाबा ने हमको पूछा कौन सी बातें बाप नहीं कर सकता है। मैंने कहा आप एक झूठ तो बोल के दिखाओ। झूठ बोल सकता है बाबा? बाबा ने कहा, इसे मैंने कहा आप क्रोध करके दिखाओ, नहीं कर सकते। आप रो के दिखाओ, सर्वशक्तिवान है तो रो के दिखा सकता है ना। हम लोग तो रो के अभी अभी बहनों को गए रोना शुरू करो तो 5 मिनट में सारी सभा रोना शुरू कर देंगे। तो बाबा ने कहा नहीं, बाबा तो रो नहीं सकता है। मैंने कहा ऐसे कई बातें आप नहीं कर सकते, आप सत्युग में आके तो दिखाओ। बाबा सत्युग में नहीं आके दिखा सकते, सत्युग में नहीं आ सकता है। इस प्रकार से कई बातें जो है वो हम कर सकते हैं, बाबा नहीं कर सकते। कई बातें ऐसी है बाप कर सकता है, हम नहीं कर सकते। इसलिए हम भी कोई कम नहीं है, हम भी अपना अस्तित्व में अपने मस्ती में मस्त रहे। हम भी कोई कम नहीं है, हम भी कई बातों के सागर है, गलतियों के सागर है, भूलों के सागर है, क्रोध के सागर है, रोने के सागर है, इतनी कितनी बातों के सागर हम भी है। तो इसलिए हमारा भी गायन है, जैसे परमात्मा का गायन है, प्यार का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, इस प्रकार से हमारा भी गायन है। हम भूलों का सागर है, ऐसे कितनी बातों के सागर है। अगर इस प्रकार से गिनती करें हाँ तो 1008 बातों के हम सागर हो सकते हैं। हंसी की बात है, कोई सीरियसली मत लेना, पर बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार से सागर की बात आई तो मेरे को याद आया हाँ कि बाबा कैसे मतलब हम बच्चों को प्यार से सिखाते थे, समझाते थे। कल की मुरली में फिर आगे बाबा ने कहा, भले पुरुषार्थी है, नंबरवार है, लेकिन हरेक के मन का आवाज एक ही है, वाह बाबा वाह। सोच क्या रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं। आप सबके दिल का आवाज वाह वाह का है ना। बाबा कहते हैं सकीले से बच्चे वाह, और बच्चे कहते हैं वाह बाबा वाह। फिर बाबा ने कहा सब कौन बैठे हुए? तो बाबा ने कहां से भी आए हैं, लेकिन यह संगठन किनों का है? तो संगठन किनों का है? और फिर बाबा ने फिर से शब्द यूज किया, चाहे नंबरवार भी है। इतने सब बैठे हुए थे, इन सब के बीच में बाबा ने सबको टाइटल दे दिया, सब नंबरवार ही है, लेकिन बाप के बच्चे। इसलिए जैसे बाप वाह वाह है, हरेक का दिल में क्या बज रहा है, वाह वाह, बाप के दिल में भी क्या गीत बज रहा है, वाह बच्चे वाह। तीसरी बार बाबा ने कहा, भल नंबरवार है, लेकिन हरेक के जीवन का लक्ष्य क्या है? तीसरी बार कहा, नंबरवार होते हुए भी हरेक का जीवन का लक्ष्य क्या है विश्व में? और इसके कारण कल हमारा दैवी संगठन को बाबा ने एक नया रूप दिया, नया शब्द दिया। आज तक हमने पहली बार सुना, कभी नहीं सुना था, कल हमने पहली बार बाबा के मुख से ये संगठन के बारे में बताया कि विश्व में अगर वाह वाह का संगठन देखना हो तो कहाँ देखने में आएगा? तो क्या हो गया ना, हमारा संगठन क्या हो गया? वाह वाह का संगठन, वाह वाह का संगठन। दुनिया में क्या होता है मालूम है? दुनिया में होता है बाबा के एक अलग मुरली में है, वाई वाई, क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्या, क्यों, कैसे, इसका संगठन होता है। वहाँ प्रश्न होता है, उस प्रकार से होता है, क्यों, क्या, कैसे, इस प्रकार से क्यों, क्या, के इसकी लंबी क्यों लगा देते हैं हम। और बाबा ने कहा कल कि ये वाह वाह का संगठन है, और उसको ये देखने कहाँ जाएंगे? यहाँ आएंगे तो मालूम पड़ेगा कल कितना बड़ा संगठन था। और सारा ही बाबा के शब्दों में कहे तो वाह वाह का संगठन था। और बाबा कहते हैं आगे जगह के कहते हैं कि बाबा वाह वाह का संगठन देख रहे हैं। फिर से कहा चाहे नंबरवार है लेकिन है वाह वाह, और नंबरवार होते हुए भी सभी प्रभु प्यारे हैं, नंबरवार होते हुए भी सभी प्रभु प्यारे हैं। तो यह संगठन का नया टाइटल बाबा ने दिया, यह संगठन प्रभु प्यारों का है। कितना सुंदर टाइटल हम बच्चों को कल मिला बाबा के मुख से कि यह संगठन प्रभु प्यारों का है। हर एक चाहे नंबरवार है, फिर से चौथी बार बोला, हर एक बार नंबरवार है, लेकिन मूल आधार सबका एक ही है, एक बाप एक बाप। अभी थोड़े दिन पहले साकार मुरली के अंदर आया था अद्वैत मत, अद्वैत मत का बाबा ने संस्कृत का अर्थ जो है दुनिया में तो अद्वैत मत का दूसरा अर्थ होता है, बाबा ने अद्वैत मत का अर्थ बताया था एक बाप की मत, उसको कहेंगे अद्वैत मत। इस प्रकार से अद्वैत मत की एक नई परिभाषा बाबा ने दिया था। कल भी इस प्रकार से बाबा ने कहा कि मूल आधार सबका एक ही है, सबके दिल के मुख से क्या निकलता है वाह बाबा वाह, और बाप से मुंह से भी क्या निकलता है वाह सिखिलते बच्चे वाह। हर एक अपने को ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। और शशि बहन आदि को प्रॉब्लम है कैसे बिठाया जाए, सब चाहते हैं हम आगे बैठे, सब आगे बैठना चाहते हैं, और इसके कारण क्या हुआ कल बाबा ने क्या किया, चाहे बैठने में आगे पीछे हो हम बाबा सबको एक समान देखते हैं। वास्तव में बाबा क्या, मैं दूर वाले को पहले देखता हूँ, नजदीक वालों को पीछे देखता हूँ। और ऐसा ही है आज के जमाने में, बाबा ने जो ये दो यहाँ पर बन गए हैं उसके कारण बाबा को देखना समझना और मुरली सुनना बहुत आसान हो गया है। तो इस प्रकार से दूर बैठे हो या नजदीक बैठे हो बाप को एक समान देख सकते हैं। तो इसके लिए बाबा ने कहा आगे पीछे हो हर एक बाप के दिख सके लदे बच्चे हैं, और बाबा सबको उसी रूप से अर्थात सके लदे बच्चों के रूप से देख रहे हैं। और बाबा फिर से कह रहे हैं कि सबके दिल में कौन है, तो क्या कहेंगे वाह बाबा वाह। और बाप के दिल में कौन है, हर बच्चा। बाबा ने फिर कहा नंबरवार है लेकिन सिकिल दे सब है, नंबरवार है। बाबा ने एक मुरली में कहा था ना अंतर तो हो रहेगा, 16108 में एक पहला नंबर में आने वाला आत्मा जो है लक्ष्मी नारायण की आत्मा की गुण और शक्ति आदि, और 16108 में लास्ट नंबर पर जो बच्चा होगा बाबा का उसका भी समान होगा, परंतु नंबर अलग अलग होगा, प्राप्ति अलग अलग होगी, अनुभूति अलग होगी। तो इस प्रकार से बाबा ने कहा सबका भले नंबर है पहला नंबर का नंबर पहला नंबर है, और 16108 का नंबर 16108 का है, उनसे भी ज्यादा गिनती करो तो 9 लाख का नंबर हो जाता है। तो इस प्रकार से सबका नंबर अलग अलग है, परंतु फिर भी बाबा के साथ प्यार के बारे में बाबा कहते हैं कि सब सकी लदे सब है, मेरा सब बच्चे सकी लदे हैं। फिर बाबा ने सवाल पूछा हुआ है कि आज के संगठन को क्या कहेंगे, आज के संगठन को, कल का जो संगठन था उसको क्या कहा, हर एक बाप का सकी लेता है ऐसा अनुभव करते हो ना। और फिर बाबा ने क्या कहा, सबकी सूरत से ऐसा अनुभव रहा है कि सबके दिल में एक बाप है, एक बाप होना चाहिए वास्तविकता है। हाँ, पर तो क्या होता है कभी कभी बाप के साथ साथ माया भी आ जाती है, पर बाबा कहते हैं कि सबके दिल में एक बाप है, और बाप भी हर बच्चे को देख मुस्कुरा रहे हैं कि वाह बच्चे वाह। फिर बहुत अच्छी बात सुनाई है, यह मिलन इस समय का मिलन, दो बार मिलन के ऊपर एम्फेसिस दिया, यह मिलन जो अब उस टाइम पर मिला। और फिर बाबा ने कहा इस समय का मिलन कितना महान है, ये वास्तविकता है। कल का मिलन जिन्होंने सुना देखा समझा, और ये मिलन की घड़ी ये मुलाकात ये संवाद घड़ी घड़ी नहीं आएंगी, कल के जो मुलाकात हुई और फिर 5000 वर्ष के बाद होगी, कितनी महान मुलाकात है। इसलिए बाबा के साथ का पहचान करना और जानना कितना महान बातें हैं। हम लोग अभी भी याद करते हैं कि साकार बाबा के समय पर कितनी बातें अच्छी होती थी। उस टाइम पर इतना हमको महसूस नहीं होता था, आज महसूस होता है कि साकार बाबा के साथ में रहने का, उनके साथ अनुभव जो करने का जो था, वो हमारे जीवन का एक अनमोल खजाना बन गया। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं कि मिलन कितना महान है, अर्थात ये मिलन जो है हमको महान बनाने वाला है। हम कितने महान बनते हैं वो हमारे हाथों में है। महान तो है पर उसमें डिग्री होती है, नंबर वार होता है। स्कूल में परीक्षा में पास तो होते हैं, पहला नंबर भी पास होता है और लास्ट नंबर भी पास होता है। पहला और लास्ट नंबर में कितना फर्क होता है, इस प्रकार से इसके अंदर भी है। ये मिलन कितना महान है, ये हमारे हाथों में है। और इसलिए बाबा ने कहा, सारे कल्प के अंदर अगर महान समय है तो अब है। सारे कल्प की बात करते हैं, सारे कल्प की बात बाबा करते हैं कि सारे कल्प के अंदर अगर महान समय है, महान समय तो अब है। इसलिए गायन है, संगम युग महान युग है। वास्तव में संगम युग का कारोबार और ज्ञान अभी ही बाबा के द्वारा ही प्राप्त हुआ। मैं अपना अनुभव, मैंने पुरुषोत्तम संगम युग किताब में लिखा हुआ है कि अज्ञान काल में मुझे मालूम नहीं था कि यह संगम युग चल रहा है, क्योंकि हम बाबा के परिचय में 50-51 में आए। उसके पहले बाबा के तो बाबा के दिव्य प्रवेश था, सृष्टि पर हो चुके थे, तो हमें मालूम नहीं था संगम युग क्या है। सब मानते थे, हम भी वो दुनिया की मान्यता के मुताबिक चलते थे कि कलयुग अभी बच्चा है, कलयुग अभी बच्चा है और अभी तो बहुत चलने वाला है। कलयुग अभी तो खाली 40,000 वर्ष बीत गए हैं, इस प्रकार से हम सुनते थे, समझते थे। और अब ज्ञान मिला, उसके बाद मालूम पड़ा कि संगम युग अभी चल रहा है, कलयुग तो अभी, और स्लोगन भी है हमारा, कलयुग जा रहा है सतयुग आ रहा है, कलयुग जा रहा है सतयुग आ रहा है। तो बाबा कहते हैं कि ये संगम युग कितना महान युग है। इस संगम युग की जो प्राप्ति जो है उसकी एक एक सेकंड की कीमत कितनी है। एक बार अव्यक्त बाबा को पटना के शायद पटना के सहयोग मिल रहे थे। बाबा ने कहा, उन्होंने पटना वालों को कहा कि आपको मालूम है एक सेकंड अगर आप बर्बाद करते हो, एक सेकंड आप बर्बाद करते हो तो कितना नुकसान करते हो, पद्मों का नुकसान आप करते हो। तो मैं पीछे में बैठा हुआ था तो बाबा समझ गए कि ये बच्चा जो हिसाब किताब करने वाला है, एक सेकंड की कीमत पद्मों की कैसे हो सकती है। हम तो समझते हैं समय की क्या कीमत है, हम तो बर्बाद करने में एक्सपर्ट है। समय को बर्बाद करना ये हमारा धंधा है, हमारा व्यवहार है, हमारा कारोबार है। तो एक सेकंड की कीमत अगर बर्बाद करते हो तो कैसे पद्मों की कमाई का नुकसान करते हो। तो बाबा ने समझ लिया मेरे सामने देख करके कहा कि संगम युग में जो आप कमाई करते हो कितनी कमाई होती है। मैंने कहा वो तो गिनती नहीं कर सकते। तो कहा संगम युग में जो कमाई करते हो सारा कल्प चलती है, संगम सतयुग में चलती है, उसके बाद त्रेता में चलती है, द्वापर कलयुग में चलती है, लास्ट में 2-3 जन्म में ही हमको नुकसान होता है। तो संगम युग में जो कमाई होती है वो सारे कल्प चलती है, और इसके कारण इसकी गिनती करो 5,000 वर्ष के अंदर एक सेकंड की कीमत कितनी हो सकती है। गिनती करो तो मालूम पड़ेगा कि एक सेकंड का नुकसान जो है, एक सेकंड की बर्बादी जो है, एक सेकंड को व्यर्थ संकल्पों में हम बर्बाद करते हैं तो पद्मों की कारोबार का नुकसान हम करते हैं। अगर ये मालूम पड़ जाए, साधारण जो है हमारी फाउंटेन पेन जो है वो भी गुम हो जाती है, हमको 2-3 दिन याद रहता है कि अरे हमारी फाउंटेन पेन गई। यहाँ तो पद्मों की कमाई हमारी जा रही है, परंतु हमें हम इतने पत्थर दिल के बन जाते हैं कभी कभी कि पद्मों की कमाई जाते हुए भी हम उसको रियलाइज नहीं कर सकते। इतनी सुंदर बाबा की बातें हैं, इसलिए पद्मों की कमाई जो है, इसलिए आप जब भी आप कोई भी बात में समय बर्बाद करते हो तो आप नोट करके रखिए कि एक सेकंड की बर्बादी समय की वो हमको पद्मों की कमाई को बर्बाद करना बर्बाद करने का प्रमाण है। इसलिए याद रहे हमको हमारा समय की कीमत होनी चाहिए। समय की कीमत नहीं होगी तो क्या होता है। हमारे गीत है, ड्रामा के अंदर गाया बनाया हुआ होता गीत है, समय का पंछी उड़ता जाए। जो हमारे गायन के पास गीत होगा मालूम नहीं ड्रामा में, वो गीत था समय का पंछी उड़ता जाए। फिर समय का पंछी जो है उड़ता जाता है, उस पंछी के साथ साथ हम भी उड़ते जाते हैं और कलयुग से सतयुग की तरफ जा रहे हैं। इस प्रकार से समय को समझना, समय की इम्पोर्टेंस को समझना और समय के इम्पोर्टेंस के साथ साथ उनके आधार पर समय को श्रेष्ठ रूप में उसका इस्तेमाल करना, ये बहुत जरूरी है। इसलिए बाबा कहते हैं संगम युग महान युग है। और आगे बहुत सुंदर बात बाबा ने कही है कि बाप दादा इसी महानता से बच्चों से मिल रहे हैं, क्योंकि जो भी बच्चे बाबा से मिले कल वो सब इतना हकीकत है कि सब द्वापर से ऊपर त्रेता यहाँ सतयुग में आएंगे। द्वापर से ऊपर हम जो भी कल संगठन में बैठे थे, जो भी बाबा के बच्चे बनते हैं, द्वापर से ऊपर तो आएंगे। द्वापर से ऊपर आने के बाद कौन सा नंबर होगा, कौन सा पुरुषार्थ होगा, कौन सा हमारा पोजीशन होगा, वो ड्रामा बताएंगे और हमारा पुरुषार्थ बताएगा। आपको मालूम रहे हमारा पुरुषार्थ में क्या होता है, साधारण प्रजा भी हो सकती है और इसे थोड़ी ज्यादा महान प्रजा बन सकती है, उसके बाद साहूकार बन सकते हैं, उसके बाद राजा बन सकते हैं, उसके बाद महाराजा बन सकते हैं और उसके बाद विश्व महाराजा बन सकते हैं। तो हमें नक्की करना है कि हमारा पोजीशन क्या होगा सतयुग त्रेता में, क्या हम साधारण प्रजा में होंगे या साहूकार होंगे या क्या होंगे। ये सब हमारे हाथों में, हमारा भविष्य हमारे हाथों में है। हमने जब योग की प्रदर्शनी बनाई थी तो योग की प्रदर्शनी ब्रह्मा बाबा, हमने बाबा को चित्र बना करके सब भेजे थे। हमने बाबा को लास्ट चित्र बनाने के लिए कहा, बाबा आप लास्ट चित्र आप बना करके भेजो और उसके नीचे की लिखत आप बना करके भेजो। तो बाबा ने वो चित्र बना करके भेजा जो बहुत प्रसिद्ध चित्र है कि पृथ्वी जो है मृत्यु सैया पर सोई हुई है, ऊपर से एटम बम हाइड्रोजन बम गिर रहे हैं और बाजू में सन्यासी कहता है कलयुग अब भी बच्चा है। इस प्रकार का पिक्चर काबू देखा भी होगा। तो बाबा ने वो चित्र बना करके भेजा और नीचे में लिखा आपका भाग्य आपका भविष्य आपके हाथों में, आपका भाग्य आपके हाथों में है, आपका भाग्य न और कोई बना सकता है न बिगाड़ सकता है, आपके भाग्य का आप मास्टर भाग्य विधाता हो। इस प्रकार से इतनी गहराई से हमारे भाग्य के बारे में अगर हम सोचे तो क्या होगा, हम अच्छे में अच्छे जिसे कारोबार कर सकते हैं। तो इसलिए मास्टर भाग्य विधाता हूँ मैं अपने भाग्य के लिए, अपना भाग्य और कोई नहीं बना सकता। संस्कृत में भी भरतुल जी कहा है परो दिदा दीदी गुब्बुदेशा हम करो मीति प्रसाभिमान स्वत्र कर्म सूत्र ग्रथित हो ही लोग, इस प्रकार के भरतुल हरि ने भी कहा हुआ है। तो इस प्रकार से हम अपने कर्मों के आधार पर अपना ही जीवन बना रहे हैं। कई जगह पर संबंध का बंधन होता है, कई जगह पर बंधन का संबंध हो जाता है। बंधन और संबंध ये हमारे हाथों में है कि हम संबंध में रहते हैं या बंधन में रहते हैं, हमारे हाथों में है हम कैसे रहते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं। परिवार में रहते हैं हम लोग, यहाँ जितने भी बैठे हैं सभी गृहस्थ जीवन में ही रहते हैं। गृहस्थ जीवन में होते हुए भी गृहस्थ जीवन का हमारा जो संबंध है आपस में, वो संबंध है या बंधन है, वो बहुत गहरी बात है। कई बात कई लोग समझते हैं हम संबंध में है और संबंध में होते हुए भी बंधन में होते हैं। और इसलिए बाबा ने कहा हुआ है और क्या कहा है मालूम है ना, अब गीता में भी अर्जुन ने लास्ट में कहा नष्टो मोहा स्मृतिर लद्वा, नष्टो मोहा बनना चाहिए संबंधों के अंदर, नष्टो मोहा होना चाहिए और नष्टो मोहा के आधार पर जो है ओरिजिनल स्मृति मैं आत्मा हूँ मैं परमात्मा की संतान हूँ वो याद आ लीजिए। जिसको ये स्मृति रही मैं आत्मा हूँ परमात्मा की संतान हूँ, इसके लिए तब संजय ने कहा कि उसके आगे विजय जो है विजय आदि जो भी है वो सब उनके जीवन चरणों की दासी बन जाएगी। तो इसलिए हम बच्चों को नष्टो मोहा बनना ही पड़ेगा और इसके लिए संबंधों के अंदर संबंध होते हुए भी संबंध क्या बंधन नहीं होना चाहिए। ये सारा ही ड्रामा जो है वो संबंध और बंधन का है। सत्युग त्रेता में संबंध है बंधन नहीं है और त्रेता के बाद द्वापर से बंधन शुरू हो जाता है, बंधन में बंधे हुए हो जाएंगे और इसके कारण क्या हो जाएगा। बाबा कहते हैं आप बच्चों के पंख जो है वो पंख माया काट लेती है, लाभ उड़ नहीं सकते हैं और इसके कारण क्या हो जाएगा आप जानते हैं। अभी मैं समझता हूँ ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजेगा, पीछे बात चालू रखेंगे।